एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे व्यक्तित्व की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मन में कविता, संगीत, दर्शन और शायद शांति निकेतन की एक छवि सी उभर आती है।
जी हाँ,
रबींद्रनाथ ठाकुर, या जैसा दुनिया उन्हें जानती है, रबींद्रनाथ टैगोर। कवि, लेखक, दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार, मतलब प्रतिभा के कितने ही आयाम थे।
बिल्कुल।
लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी खोज थी अलग अलग धाराओं के बीच एक सामंजस्य, एक संतुलन बनाने की कोशिश। पूरब और पश्चिम, परंपरा और आधुनिकता,
व्यक्ति और समाज,
राष्ट्र और विश्व।
सही कहा आपने।
हाँ, वे सिर्फ बंगाल या भारत के ही नहीं थे, बल्कि सही मायने में एक विश्व नागरिक थे। एक ऐसी आवाज जिसने सीमाओं के पार जाकर मानवता की बात की। और 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, वो भी पहले गैर यूरोपीय, ये तो एक बहुत बड़ी बात थी।
जी बिल्कुल, एक मील का पत्थर था वो। लेकिन उनका पूरा जीवन, जो 7 मई 1861 से 7 अगस्त 1941 तक फैला, वो भारत के इतिहास के एक बेहद, मतलब उथल पुथल भरे दौर का गवाह रहा।
हाँ, ब्रिटिश राज का चरम और स्वतंत्रता संग्राम का उभार।
बिल्कुल, और इसी दौर में उन्होंने अपनी वो अनूठी सोच, उसको आकार दिया।
तो चलिए आज उनकी इसी सोच, उनके जीवन की यात्रा, उनकी जो कालजयी रचनाएं हैं और उस विरासत की पड़ताल करते हैं जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रभावित किया है।
हाँ, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि टैगोर आज भी हमारे लिए इतने प्रासंगिक क्यों हैं।
बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उस माहौल से जिसमें उनका जन्म और विकास हुआ, वो बंगाल नवजागरण का दौर। ये क्या था और टैगोर के घर जोड़ा सांको ठाकुर बाड़ी की इसमें क्या भूमिका थी?
देखिए, बंगाल नवजागरण, या जिसे बंगाल रेनेसा कहते हैं, वो 19वीं सदी में बंगाल में सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक सुधारों की एक बहुत बड़ी लहर थी।
इसमें क्या हो रहा था कि भारतीय परंपराओं का एक तरह से पुनर्मूल्यांकन हो रहा था और साथ ही साथ पश्चिमी विचारों, विज्ञान और साहित्य से भी एक संवाद, एक कनेक्शन बन रहा था।
अच्छा,
राजा राममोहन राय जैसे सुधारकों ने तो इसकी नींव रखी थी, और टैगोर परिवार, खासकर उनका घर जोड़ा सांको, वो इस नवजागरण का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था।
उनका घर ही केंद्र था।
जी हाँ, उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर खुद ब्रह्म समाज के नेता थे, जो एक सुधारवादी आंदोलन था। उनका घर सिर्फ एक हवेली नहीं थी, बल्कि उस दौर के कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और विचारकों का एक संगम स्थल बन गया था।
मतलब एक अड्डा कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, जहाँ नए विचारों पर बहस होती थी, नई कलाएं पनपती थीं।
यानी एक ऐसा माहौल जहां परंपरा और आधुनिकता का मंथन चल रहा था। उस समय साहित्य में क्या खास बदलाव आ रहे थे? भाषा के स्तर पर साहित्य में एक बड़ा बदलाव भाषा को लेकर ही था। बिल्कुल, तब तक साहित्यिक बांग्ला जो थी वो अक्सर भारी भरकम, संस्कृतनिष्ठ शब्दों से भरी होती थी।
अच्छा, आम लोगों के लिए मुश्किल।
हाँ, थोड़ी दूर थी आम लोगों की पहुंच से। बंकिम चंद्र चटर्जी और माइकल मधुसूदन दत्त जैसे लेखकों ने इसे बदलना शुरू किया था, लेकिन टैगोर ने इसे एक नई ऊंचाई दी, कह सकते हैं।
कैसे?
उन्होंने चलित भाषा, यानी आम बोलचाल की जो सहज सरल भाषा है, उसे साहित्य का मुख्य माध्यम बनाया।
अच्छा,
ये उस वक्त के लिए काफी क्रांतिकारी कदम था, समझिए। और साथ ही उपन्यास, लघु कहानी, गद्य जैसी विधाएं भी विकसित हो रही थीं।
लेकिन क्या इस साहित्य को सामाजिक बदलाव का कोई विरोध भी हुआ? मतलब पारंपरिक विद्वानों ने इसे स्वीकार किया, इस चलित भाषा को?
हाँ हाँ बिल्कुल हुआ। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव का विरोध तो होता ही है ना।
सही बात है।
कई पारंपरिक विद्वानों और साहित्यकारों ने चलित भाषा के प्रयोग को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि इससे साहित्य की गरिमा कम हो रही है।
लेकिन टैगोर और उनके समकालीन लेखक अपनी बात पर अड़े रहे, और आखिरकार चलित भाषा ही आधुनिक बांग्ला साहित्य की मुख्य धारा बन गई, और इसने साहित्य को एक नई ताजगी दी, एक व्यापक पहुंच दी।
और राजनीतिक तौर पर माहौल कैसा था उस समय? राष्ट्रवाद की भावनाएं किस तरह उभर रही थीं?
देखिए, ब्रिटिश शासन अपनी जड़ें जमा चुका था, और उसकी प्रतिक्रिया में जाहिर है भारतीय राष्ट्रवाद धीरे धीरे आकार ले रहा था। शुरुआत में ये शिक्षित अभिजात वर्ग तक ही सीमित था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक, खासकर 1905 का जो बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन हुआ,
हाँ, वो तो बहुत बड़ा आंदोलन था।
जी, उसके साथ ही एक जन आंदोलन का रूप लेने लगा। टैगोर ने इस पूरे दौर को न सिर्फ देखा, बल्कि उसमें सक्रिय भागीदारी भी की। हालांकि ये भी सच है कि राष्ट्रवाद को लेकर उनके विचार पारंपरिक राष्ट्रवादियों से काफी अलग और जटिल थे।
अच्छा, उस पर हम आगे बात करेंगे जरूर।
जी बिल्कुल, उस दौर के दूसरे बड़े विचारकों जैसे स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी, उनके साथ उनके कैसे संबंध थे, क्या विचारों का टकराव भी होता था?
उनका समकालीन विचारकों से गहरा संवाद था, ये तो है। स्वामी विवेकानंद से उनकी मुलाकात हुई थी और वो उनके विचारों से प्रभावित भी थे, हालांकि दोनों का रास्ता अलग था। महात्मा गांधी के साथ उनका संबंध तो बहुत ही गहरा और सम्मानजनक था। गांधी जी उन्हें गुरुदेव कहते थे
और टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, है ना?
बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने पूछा, उनके बीच गंभीर बौद्धिक मतभेद भी थे।
अच्छा, किस तरह के?
खासकर राष्ट्रवाद के स्वरूप को लेकर, चरखे के प्रतीकवाद को लेकर, असहयोग आंदोलन के तरीकों को लेकर वे खुलकर इन पर बहस करते थे।
ये तो अच्छी बात है।
हाँ, और ये उनकी आपसी समझ और सम्मान को ही दिखाता है। और उनका संवाद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था।
हाँ, ये भी सुना है।
उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन, रोमिया रोला, W.B. येट्स, हेनरी बर्गसन जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय विचारकों और लेखकों से भी एक जीवन संपर्क बनाए रखा था।
अद्भुत। अब उनके शुरुआती जीवन पर आते हैं। जोड़ा सांको की उस विशाल हवेली में बचपन कैसा बीता? सुना है काफी एकाकी था उनका बचपन।
हाँ, टैगोर ने खुद अपने संस्मरणों में लिखा है कि बचपन काफी एकाकी था। वो देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14 बच्चों में सबसे छोटे थे।
14 बच्चे?
जी, पिता अक्सर यात्राओं पर रहते थे और बच्चों का पालन पोषण ज्यादातर नौकरों और घरेलू शिक्षकों की देखरेख में होता था। घर के अंदर भी बच्चों के घूमने फिरने की सीमाएं तय थी।
तो फिर?
तो इस अकेलेपन ने उन्हें शायद अपनी कल्पना की दुनिया रचने और प्रकृति को करीब से निहारने का मौका दिया। वो घंटों बरामदे में बैठ बाहर की दुनिया देखते रहते थे, ऐसा वो लिखते हैं।
ये दिलचस्प है कि जिस व्यक्ति ने बाद में शिक्षा में इतने क्रांतिकारी विचार दिए, उसे खुद पारंपरिक स्कूली शिक्षा बिल्कुल रास नहीं आई।
बिल्कुल, और ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसने शायद शांति निकेतन की नींव रखी।
हाँ,
उन्हें कलकत्ता के कई नामी स्कूलों में भेजा गया, ओरिएंटल सेमिनरी, नॉर्मल स्कूल, सेंट जेवियर्स, लेकिन कहीं भी उनका मन नहीं लगा। उन्हें स्कूलों का माहौल दमघोटू लगता था, अनुशासन एकदम यंत्रवत।
फिर इंग्लैंड भी गए थे।
हाँ, 1878 में उन्हें बैरिस्टर बनाने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला भी लिया, लेकिन 17 महीने बाद ही बिना डिग्री लिए लौट आए।
अच्छा।
हालांकि इंग्लैंड प्रवास के दौरान उन्होंने पश्चिमी साहित्य और संगीत का गहरा अध्ययन जरूर किया, जिसका उनकी रचनात्मकता पर काफी प्रभाव पड़ा। असल में उन्हें घर पर पढ़ना और खुद से सीखना ज्यादा पसंद था।
और परिवार ने भी उन्हें ये स्वतंत्रता दी।
जी हाँ, ये अच्छी बात थी।
और इतनी कम उम्र में लिखना कैसे शुरू हुआ और उनके लेखन में वो गहराई कब आई जिसके लिए वो जाने जाते हैं?
उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र से कविता लिखना शुरू कर दिया था।
8 साल?
हाँ, और किशोरावस्था में उनकी कविताएं पारिवारिक पत्रिकाओं में छपने भी लगी थी। लेकिन उनके लेखन में जो असली मोड़ आया वो तब आया जब वे 1890 के दशक में अपनी पारिवारिक जमींदारी संभालने पूर्वी बंगाल गए।
अच्छा, जमींदारी संभालने?
जी, अब के बांग्लादेश में शिलैदा और शाहजादपुर जैसे इलाके थे। वहां उन्होंने पहली बार बंगाल के ग्रामीण जीवन, वहां की नदियों, खेतों और आम इंसानों को बहुत करीब से देखा और महसूस किया।
वो अनुभव बहुत गहरा रहा होगा।
बहुत। इस अनुभव ने उनकी कहानियों, कविताओं और गीतों को एक नई मानवीय गहराई दी, सहानुभूति दी और जमीनी हकीकत से जोड़ा। उनकी कई बेहतरीन कहानियां इसी दौर की देन हैं।
चलिए अब उनके मुख्य विचारों और साहित्यिक योगदानों पर आते हैं। भाषा के आधुनिकीकरण की बात तो हमने की, कविता और कहानी के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान क्या मानती हैं आप?
देखिए, कविता में उन्होंने सिर्फ चलित भाषा का ही प्रयोग नहीं किया, बल्कि बांग्ला छंदों के साथ नए प्रयोग किए, नई लय और धुनें बनाई। उनकी कविताओं में गहरा आत्मनिष्ठ, मतलब सब्जेक्टिव, और गीतात्मक लिरिकल स्वर है जो पहले उतना प्रचलित नहीं था।
अच्छा।
वो भावनाओं के सूक्ष्म उतार चढ़ावों को बड़ी सहजता से पकड़ते थे। और कहानी के क्षेत्र में तो उन्हें आधुनिक भारतीय लघु कहानी का पितामह कहा जा सकता है।
सच में?
हाँ, उन्होंने कहानी को महज घटना या उपदेश से निकालकर किरदारों के मनोविज्ञान, उनके आंतरिक द्वंद और सामाजिक यथार्थ के चित्रण का माध्यम बनाया। गल्पगुच्छ में जो उनकी कहानियां हैं वो इसका प्रमाण है।
हाँ, वो तो कमाल है।
और उन्होंने गद्य कविता यानी प्रोज पोएट्री को भी एक सशक्त रूप दिया। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो गीतांजलि ही है।
हाँ, गीतांजलि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रविंद्र संगीत, वो तो जैसे बंगाल की आत्मा में बसा हुआ है।
निश्चित रूप से। उन्होंने लगभग 2200 गीतों की रचना की, शब्द और संगीत दोनों उनके अपने। संगीतबद्ध कविता नहीं है बल्कि एक अलग विधा है जिसे रविंद्र संगीत कहते हैं। इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों, बंगाल के लोक संगीत जैसे बाउल और कीर्तन और यहाँ तक कि पश्चिमी धुनों का भी अद्भुत सम्मिश्रण है। उनके गीत जीवन के हर पहलू को छूते हैं, प्रेम, प्रकृति, भक्ति, देशभक्ति, दुख, उत्सव, सब कुछ।
लगता है संगीत उनकी रचनात्मकता का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से फैला हुआ पहलू है।
हाँ, कह सकते हैं।
अब उनके मूल दार्शनिक विचारों की बात करें तो राष्ट्रवाद को लेकर उनकी आलोचना काफी चर्चित है। वे किस तरह के राष्ट्रवाद के खिलाफ थे और क्यों?
देखिए, टैगोर राष्ट्र या देश प्रेम के खिलाफ नहीं थे। वो उस संकीर्ण, आक्रामक और पश्चिम से आयातित राष्ट्रवाद के आलोचक थे जो दूसरे राष्ट्रों या संस्कृतियों के प्रति घृणा या श्रेष्ठता के भाव पर आधारित हो।
अच्छा।
उनका मानना था कि ऐसा राष्ट्रवाद मानवता को बांटता है और अक्सर क्रूरता और हिंसा की ओर ले जाता है। वो स्वदेशी समाज की बात करते थे जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, आत्मनिर्भर हो, लेकिन दुनिया के लिए खुला भी हो।
मतलब संतुलन की बात।
हाँ, संतुलन। वे मानते थे कि सच्ची देशभक्ति मानवतावाद का विरोध नहीं कर सकती। उनका प्रसिद्ध उपन्यास है घरे बायरे।
जी, आपने जिक्र किया था।
वो इसी मुद्दे की एक गहरी मनोवैज्ञानिक पड़ताल है। उसमें वे दिखाते हैं कि कैसे राष्ट्रवाद का जुनून व्यक्तिगत संबंधों और नैतिक मूल्यों को नष्ट कर सकता है।
यानी वे राष्ट्रवाद से ऊपर मानवता को रखते थे। इसे ही शायद उनका सार्वभौमिक मानवतावाद, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म कहते हैं।
हाँ, उनका जोर हमेशा विश्व बोध या विश्व भारती पर रहा, विश्व का भारत में और भारत का विश्व में मिलन। वे मानते थे कि हर संस्कृति के पास दुनिया को देने के लिए कुछ अनूठा है और सच्चा विकास तभी संभव है जब विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान हो। वो पूरब की आध्यात्मिकता और पश्चिम की कर्मठता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच एक सेतु बनाना चाहते थे।
और व्यक्ति की स्वतंत्रता।
हाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्माभिव्यक्ति को बहुत महत्व देते थे, लेकिन साथ ही सामाजिक दायित्व और समुदाय के प्रति कर्तव्य पर भी जोर देते थे। उनका दर्शन किसी एक वाद में बंधा हुआ नहीं था बल्कि एक सतत खोज और संतुलन का प्रयास था।
और यही दर्शन उनकी शिक्षा संबंधी सोच यानी शांति निकेतन में भी झलकता है।
बिल्कुल। शांति निकेतन, जिसकी स्थापना 1901 में हुई और जो 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना, वो उनके शैक्षिक दर्शन का साकार रूप था। फिर उस समय की ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के सख्त खिलाफ थे। उनके अनुसार वो केवल क्लर्क पैदा करती थी, विद्यार्थियों की रचनात्मकता को मारती थी और उन्हें अपनी संस्कृति और परिवेश से काट देती थी।
तो शांति निकेतन में क्या अलग था?
शांति निकेतन में उन्होंने ठीक इसके विपरीत करने की कोशिश की। प्रकृति के करीब, खुले माहौल में शिक्षा, कला, संगीत और नृत्य को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना, गुरु शिष्य के बीच एक आत्मीय संबंध और विभिन्न संस्कृतियों के अध्ययन पर जोर देना, ये शिक्षा को जीवन से जोड़ने का एक प्रयास था।
बहुत खूब। चलिए, अब उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं पर आते हैं। गीतांजलि ने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया, क्या खास था उसमें?
गीतांजलि मूल बांग्ला में 1910 में आई और अंग्रेजी सॉन्ग ऑफरिंग्स 1912 में, जिसका अनुवाद उन्होंने खुद किया था, वो दरअसल कविताओं या कह लें गीतों का संग्रह है।
जी।
इसकी पृष्ठभूमि में कवि का गहरा व्यक्तिगत दुख भी था। 1902 से 1907 के बीच उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी देवी, बेटी रेणुका और बेटे शमिंद्रनाथ को खो दिया था।
ओहो, ये तो बहुत कठिन समय रहा होगा।
जी, और इस दुख ने शायद उनकी आध्यात्मिक खोज को और तीव्र किया। गीतांजलि के गीतों में ईश्वर के प्रति एक गहरा व्यक्तिगत और सहज प्रेम झलकता है। प्रकृति के कण कण में उसकी उपस्थिति का अनुभव है और जीवन मृत्यु पर चिंतन है।
भाषा कैसी है?
भाषा बहुत सरल, सीधी, लेकिन हृदय को छू लेने वाली है। और अंग्रेजी अनुवाद ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय आध्यात्मिकता की एक नई, आधुनिक और मानवीय आवाज से परिचित कराया।
उपन्यासों में गोरा और घरे बायरे का आपने जिक्र किया, गोरा किस बारे में है?
गोरा 1910 एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। ये 20वीं सदी की शुरुआत के भारत में पहचान के संकट, धर्म, जाति और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों से जूझता है।
क्या कहानी है इसकी?
इसका मुख्य पात्र है गोरा, जो दिखने में गौरवर्ण है और कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी है। बाद में उसे पता चलता है कि वो जन्म से आयरिश है और उसे एक हिंदू ब्राह्मण परिवार ने पाला था।
अच्छा।
ये खोज उसके पूरे विश्वास और पहचान को हिला देती है। उपन्यास बहुत जटिल तरीके से ये सवाल उठाता है कि भारतीयता का असली मतलब क्या है? क्या ये जन्म पर आधारित है, धर्म पर, या कर्म और विचारों पर?
ये तो बहुत गहरा सवाल है।
जी।
और घरे बायरे में राष्ट्रवाद की आलोचना किस तरह की गई है?
घरे बायरे 1916 स्वदेशी आंदोलन के समय में सेट है। कहानी एक प्रेम त्रिकोण के इर्द गिर्द घूमती है। बिमला, उसका पति निखिल जो एक उदार मानवतावादी जमींदार है, और निखिल का दोस्त संदीप। संदीप एक करिश्माई लेकिन अवसरवादी और कट्टर राष्ट्रवादी नेता है। बिमला पहले संदीप के जोशीले राष्ट्रवाद से आकर्षित होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी खोखली नैतिकता और हिंसात्मक तरीकों का एहसास होता है।
अच्छा,
ट्रेगोर इस कहानी के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे राष्ट्रवाद का अंधा जुनून व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ कर सकता है और नैतिक मूल्यों को ताक पर रख सकता है। निखिल के चरित्र के जरिए वे अपने मानवतावादी और तर्कसंगत राष्ट्रवाद का पक्ष रखते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं है, बल्कि विचारधारा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की गहरी पड़ताल है।
और उनकी कहानियां जैसे काबुलीवाला, वे आज भी क्यों इतनी पसंद की जाती हैं? उनमें क्या खास है?
उनकी कहानियां जो गल्प कुछ में संकलित हैं, वो शायद उनकी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली रचनाएं हैं। काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, छुट्टी, नष्ट नीड, जिस पर सत्यजीत रे ने चारुलता बनाई।
हाँ, बेहतरीन फिल्म है वो,
है ना? ये कहानियां आम लोगों के जीवन, उनके सपनों, उनके दुख दर्द, उनके रिश्तों की बारीकियों को इतनी सहानुभूति और मनोवैज्ञानिक समझ के साथ पकड़ती हैं कि वे कालजयी हो गई हैं। वे अक्सर उन लोगों की बात करती हैं जो समाज के हाशिए पर हैं या जिनकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया जाता है। उनमें एक सार्वभौमिक मानवीय अपील है जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती।
नाटकों और बात की कविताओं के बारे में भी कुछ बताएं।
उनके नाटक भी उतने ही विविध हैं। डाकघर, द पोस्ट ऑफिस 1912 एक प्रतीकात्मक नाटक है। एक बीमार बच्चा अमल है जो खिड़की से बाहरी दुनिया को देखता है और राजा के डाकिये का इंतजार करता है। ये मुक्ति की आकांक्षा और मानवीय आत्मा की सीमाओं का बड़ा मार्मिक चित्रण है।
और रक्त कर्बी?
रक्त कर्बी रेड ओलियंडर्स 1926 एक बहुत शक्तिशाली सांकेतिक नाटक है। ये पूंजीवादी शोषण और अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ मानवीय स्वतंत्रता और प्रेम के संघर्ष को दर्शाता है। उन्होंने चित्रांगदा जैसी नृत्य नाटिकाएं भी लिखी।
अच्छा,
और बाद की कविताओं में जैसे शेषेर कविता द लास्ट पोएम 1929 जो एक तरह की उपन्यासिका है, उसमें प्रेम, कला, आधुनिकता और मृत्यु पर अधिक परिपक्व और दार्शनिक चिंतन मिलता है।
नोबेल पुरस्कार ने उन्हें वैश्विक पहचान दी, लेकिन आपने कहा कि पश्चिम में उनकी छवि कुछ हद तक सीमित भी रही, ऐसा क्यों?
हाँ, देखिए, नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा सम्मान था और इसने भारत को विश्व साहित्यिक मानचित्र पर ला दिया। डब्ल्यू बी येट्स जैसे कवियों ने अंग्रेजी गीतांजलि की भूमिका लिखी और वे बहुत प्रभावित हुए। लेकिन अक्सर पश्चिमी दुनिया ने उन्हें मुख्य रूप से एक रहस्यवादी, आध्यात्मिक, पूरब के संत कवि के रूप में देखा जो उनकी गीतांजलि वाली छवि पर आधारित था।
अच्छा, मतलब एक स्टीरियोटाइप बन गया।
हाँ, कुछ हद तक। टैगोर खुद इस सरलीकरण से अवगत थे और कुछ हद तक चिंतित भी थे। उनकी सामाजिक आलोचना, उनके राजनीतिक विचार, उनका शैक्षिक दर्शन, उनकी कहानियों का यथार्थवाद, ये पहलू पश्चिम में उतने उजागर नहीं हुए जितनी उनकी गीतात्मक कविताएं हुईं।
और उन्हें जो नाइटहुड मिली थी, उसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। ये उनके चरित्र के बारे में क्या बताता है?
हाँ, 1915 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि दी थी, लेकिन 1919 में जब अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं, तो टैगोर इस बर्बरता से इतने ज्यादा आहत हुए कि उन्होंने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड त्याग दी।
ये बहुत बड़ा कदम था।
बहुत बड़ा। उन्होंने तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक बहुत तीखा पत्र लिखा था जो उनके नैतिक साहस, उनकी अंतरात्मा की आवाज और अपने देशवासियों के प्रति उनकी गहरी संवेदना को दर्शाता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ विचारक या कवि नहीं थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर सत्ता के खिलाफ खड़े होने का साहस भी रखते थे।
उनकी विरासत तो बहुत व्यापक है। भारत का राष्ट्रगान, गांधी जी द्वारा गुरुदेव कहा जाना, सत्यजीत रे की फिल्में, आज उनकी प्रासंगिकता क्या है आज के समय में?
मेरे ख्याल से वे आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं।
कैसे?
देखिए, जिस तरह आज दुनिया भर में संकीर्ण राष्ट्रवाद और पहचान की राजनीति फिर से सिर उठा रही है, टैगोर की मानवतावादी और विश्व बंधुत्व की दृष्टि हमें एक वैकल्पिक रास्ता दिखाती है।
पर्यावरण संकट के इस दौर में प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने पर उनका जोर हमें सोचने पर मजबूर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में रटंत विद्या और मानकीकरण के बढ़ते दबाव के बीच उनकी रचनात्मक, कला आधारित और समग्र शिक्षा की दृष्टि एक प्रेरणा है।
सही बात है।
और विभिन्न संस्कृतियों के बीच बढ़ते तनाव और संवादहीनता के समय में उनका विश्व भारती का सपना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी दुनिया के लिए खिड़कियां खुली रखना संभव है और जरूरी भी।
उनके जीवन के कुछ और रोचक या कम ज्ञात पहलू, आपने उनके व्यक्तिगत दुखों का जिक्र किया था। एक और बात जो मुझे हमेशा चकित करती है, वह है उनका बुढ़ापे में चित्रकार बन जाना।
हाँ, ये सचमुच अद्भुत है। उन्होंने लगभग 67 साल की उम्र में गंभीरता से चित्र बनाना शुरू किया।
67 की उम्र में? जी, और अपने जीवन के अंतिम दशक में लगभग 2500 से 3000 चित्र और रेखाचित्र बना डाले। और वे कोई पारंपरिक चित्र नहीं थे, बल्कि बहुत ही आधुनिक अभिव्यंजनावादी एक्सप्रेशनिस्टिक शैली के थे।
अच्छा।
उनमें अजीबोगरीब जीव, उदास चेहरे, गहरे रंग दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके अवचेतन मन की अभिव्यक्ति हों। ये उनकी कभी न रुकने वाली रचनात्मक ऊर्जा का प्रमाण है।
कमाल है।
एक और बात, वो अपनी वैश्विक प्रसिद्धि को लेकर भी थोड़े असहज रहते थे। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। और हाँ, गांधी जी के साथ उनके मतभेद, खासकर चरखे को आर्थिक या आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक मानने पर, काफी गहरे थे, लेकिन वो हमेशा सम्मानजनक बने रहे।
उनके कुछ प्रसिद्ध कथन जो उनके विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हो सामने वालों के लिए?
जरूर, उनके कई कथन आज भी गूंजते हैं।
Where the mind is without fear and the head is held high, ये सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि मन की, विचारों की, आत्मा की स्वतंत्रता का आह्वान है। जहां ज्ञान मुक्त हो और दुनिया संकीर्ण दीवारों में बंटी न हो।
बहुत सुंदर।
उनका एक कथन है, विश्वास वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस कर लेता है और गाता है। ये मुश्किल समय में भी आशा और मनुष्य की आंतरिक शक्ति पर उनके विश्वास को दर्शाता है।
वाह।
राष्ट्रवाद पर उनका रुख घरे बायरे के पात्र निखिल के इस कथन से स्पष्ट होता है, मैं हीरे के दाम पर कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूं मैं देशभक्ति को मानवता पर कभी विजय प्राप्त नहीं होने दूंगा।
सीधा और स्पष्ट।
शिक्षा पर उनका दर्शन, सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। मतलब सिर्फ सीखना नहीं बल्कि जीना सिखाने वाली शिक्षा।
जी।
और कर्म और आनंद पर, मैं सोया और सपना देखा कि जीवन आनंद है, मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है, मैंने कर्म किया और देखो सेवा ही आनंद है। ये व्यक्तिगत खुशी और समाज के प्रति कर्तव्य को जोड़ने का एक सुंदर विचार है। तो टैगोर का जीवन और दर्शन हमें लगातार सोचने को प्रेरित करता है। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे अपनी पहचान और संस्कृति पर गर्व करते हुए भी पूरी मानवता से जुड़ा जा सकता है। कैसे प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि हमारा हिस्सा है। कैसे शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया है। आज जब दुनिया अनेक विभाजनों और संकटों से जूझ रही है, शायद टैगोर के विचारों में हमें कुछ रास्ते मिल सकते हैं।
बिल्कुल।
वे हमें कहीं ना कहीं ये सवाल पूछते हैं, क्या हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मन भयमुक्त हो और सिर सम्मान से उठा रहे? ये विचार हमारे लिए छोड़ गए हो।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।